Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Gaur Natraja Dayalika, Gaur Natraja Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahansa Paripurajakacharya Shilkarshat Shri Srimad Bhaicharanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki upasthit bhakt vrind ki jai upasthit bhakt vrind ki jai upasthit bhakt vrind ki jai shri shri guru gauranga ki om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta prayeshva bhadreshu Nityam bhagavat sevaya Bhagavat yuktama shloke Bhaktir bhavati nashtaki Bhagavat sar ki shrinkhla mein 11ve skand ke 12ve adhyay par चर्चा है इसके पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे कृपया दोहराइए श्री भगवान वाच नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो Neshtapurtam nadakshina Pratani yagyashchandansi Tirthani niyamayamaha Yathavarundhe satsangaha Sarvasangapahohima Shri Bhagavan Uvacha Narodhayati Mam Yogo Nasankhyam Dharma Evacha Nasvadhyayas Tapastyago Neshtapurtam Nadakshina Vratani yagyashchandamsi Tirthani niyamayamaha Yathavarundhe satsangaha सर्व संगापहो हि माम। श्री भगवान उवाच नरोधयति माम योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टपूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्ध सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्। यथा वरुन्ध सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्। श्री भगवान उवाच, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, न रोधयति नियंत्रित नहीं करता माम मुझको योग अष्टांग योग पद्धति, न तो सांख्यम भौतिक तत्वों का वैश्लेषिक अध्ययन, धर्म अहिंसा जैसी सामान्य करुणा एव निसंदेह च भी न तो स्वाध्याय वेदों का उच्चारण, तपह तपस्या त्याग संन्यास, न तो इष्टपूर्तम यज्ञ करना तथा कुएं खुदवाना या वृक्ष लगाना जैसे आम जनता के कल्याण कार्य, न तो दक्षिणा दान व्रतानी व्रत रखना यज्ञ देवताओं की पूजा, छंदांसी गुह्य मंत्रों का उच्चारण, तीर्थानी तीर्थ स्थानों का भ्रमण, नियमाः आध्यात्मिक जीवन के लिए मुख्य आदेशों का पालन करना, यमाः तथा गौण विधान भी यथा जिस तरह अवरुंधे अपने वश में करता है, सत्संगः मेरे भक्तों की संगति, सर्व समस्त संगह भौतिक संगति, अपह हटाने वाला ही निश्चय ही माम मुझको। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति नष्ट की जा सकती है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग का अभ्यास करे, भौतिक प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चारण करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 12वां अध्याय है ज्ञान और वैराग्य से परे, इसका शीर्षक है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, अब मैं तुम्हें परम रहस्य बताने जा रहा हूं, वो ही तमम ज्ञान देने जा रहा हूं। तो ये हालांकि बहुत छोटा अध्याय है, केवल 24 श्लोकों का अध्याय, और प्रमुखता पहले 15 श्लोकों में भगवान ने गोपियों की स्थिति का वर्णन किया। परम गुह्य ज्ञान को दे रहे हैं और उसको देने के लिए गोपियों की जो स्तर है उसको स्थापित करते हैं। और फिर अगले 16वें श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक 24वें श्लोक तक किस तरह शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है उसको वो दे रहे हैं। ये दो प्रमुख भाग इस अध्याय के देखे जा सकते हैं। तो इस पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले सनातन गोस्वामी को प्रार्थना, सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। कृपया आप सब साथ में कहें, सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते
सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरो मन्महाधना, मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचो चतह कर, हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा।
तो भगवान जो भी श्लोक हमने पढ़ा उसमें कह रहे हैं कि जीवन में या कोई भी पथ का हम जब पालन करते हैं, चाहे बहुत सारे पथों का उन्होंने वर्णन किया, योग, सांख्य, दान, संन्यास, ज्ञान, जब तक भक्तों का संग नहीं है उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो इस बात को यहाँ हम प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। संग से क्या होता है? संग से पहला प्रभाव होता है कि भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। एका किया मार ना ही पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। अकेले रहकर बल नहीं होता भगवान की भक्ति करने का। तो सबसे पहला प्रभाव भक्तों के संग का होता है कि भक्ति करने का बल, भक्ति करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। नहीं तो ऐसे जगत में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा कार्य करने वाले हैं, पुण्यात्माएं हैं, लेकिन भक्त नहीं। क्यों? उनके अंदर वो प्रेरणा नहीं है भक्ति करने की, या सही मार्ग का उन्हें पता नहीं। इसीलिए जब भक्तों के संग में आते हैं तो भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है भक्ति करने के लिए। दूसरा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुल जाता है। चाहे अन्य कोई भी मार्ग से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का प्रयास करे, जब तक भक्तों के संग में नहीं आता तब तक आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रभाव, भक्तों के संग में आने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति बड़ी सरल हो जाती है। जैसे यहां भी कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वश में नहीं आता बाकी सारे कार्यों से, लेकिन भक्तों के संग में जो रह रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके वश में बड़ी सरलता से आता। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सुविधा मिलती है, अवसर मिलता है। भक्तों के संग में आकर श्रवण करने में रुचि बढ़ती है। न उत्पादये यदि रतिम श्रम एव हि केवलम विश्वक्सेन कथा सुया। भगवान की कथाओं में अगर रुचि नहीं उत्पन्न हुई है तो फिर श्रम एव हि केवलम। तो भक्तों के संग में आकर श्रवण में रुचि बढ़ती है। नहीं तो बाहर रहते हैं, अलग रहते हैं। अभी हम में से भी हम लोग अगर भक्तों के संग में नहीं रहे, अकेले रहने लगे, धीरे धीरे श्रवण में रुचि चली जाएगी, जो अभी रुचि। तो इसलिए श्रवण में रुचि हमें भक्तों के संग से आती, जिसको हमें बहुत ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए, और वो भी कृष्ण की कृपा भक्तों के संग में ही आती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। कृष्ण की कृपा भी भक्तों के संग में ही आती है, और इसीलिए भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों के संग में हैं तो मुझे वश में कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ भी कीजिए, कोई प्रयास कीजिए, लेकिन मुझे वश में नहीं कर पाएंगे। तो आगे भगवान कहते हैं, कुछ यहाँ पर भगवान ने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया, व्रतों का वर्णन किया। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब भक्तों के संग में है तो कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, ना एकादशी, ना जन्माष्टमी। भगवान ने ही कहा व्रतों से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो भी चीजें हमें भक्ति में मदद करती हैं उन्हें हमें बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। सो भगवान के आविर्भाव या माधव तिथियों पर व्रत करना,
ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे हमें करना चाहिए। तो ये कहने के बाद भगवान फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि भक्तों के संग में ही पूर्णता प्राप्त होती है। तो मानो उद्धव के मन में प्रश्न आया हो, भगवान उद्धव से बात कर रहे हैं, तो उद्धव के मन में प्रश्न आया हो, कैसे आप कह सकते हो कोई उदाहरण, तो भगवान बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। भगवान ने उदाहरण दिए कि बहुत सारे लोग देवताओं में, अप्सराओं में, किन्नर, गंधर्वों में, और फिर भगवान ने नाम भी लिए। भगवान ने कहा कि देखो वृत्रासुर, देखो प्रहलाद, बलि महाराज, गजेंद्र, ऐसे कई नाम, विभीषण, भगवान बहुत सारे नामों को ले रहे हैं कि जिन्होंने, और कई असुरों का नाम लिया, बाणासुर इत्यादि, कि उनको भी भक्तों के संग के कारण उनका जीवन सफल हुआ। जैसे वृत्रासुर, वृत्रासुर को नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु हैं, तो वो नारद मुनि से संवाद हुआ, और इतना ही नहीं, उन्हें तो भगवान का भी संग प्राप्त हुआ, भगवान अनंत की उन्होंने भक्ति की, सो उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ। विभीषण को हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ, स्वयं रामचंद्र जी का संग प्राप्त हुआ। कुब्जा का वर्णन कर रहे हैं भगवान, कुब्जा को कौन से भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तो कुब्जा को पूर्व जन्म में नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ था, जिस कारण से उसको ही, तो भगवान वर्णन करते हैं कि देखिए गजेंद्र, तो गजेंद्र भी पूर्व जन्म में बहुत महान भक्त था, भक्तों का संग प्राप्त किया था उसने। तो जिनका भी देखें, बलि महाराज, बलि महाराज को कौन से भक्त का संग प्राप्त हुआ, वो तो दैत्यों में लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, बलि महाराज को उनके दादा प्रहलाद महाराज का संग प्राप्त हुआ, उससे अच्छा और क्या संग हो सकता है। तो जितने भी भगवान ने बहुत सारे नाम, विभीषण, हनुमान, गजेंद्र, वृत्रासुर, कुब्जा, गोपियां, ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियों को भी वर्णन है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई थी। तो ये सारे जटायु, जटायु का वर्णन करते हैं, तो जटायु को कौन से भक्त का संग प्राप्त हुआ, भगवान ने ऐसे नाम लिए हैं। तो जटायु को ऐसा वर्णन है कि उनको वो संग किया करते थे गरुड़ जी का, और फिर दशरथ महाराज का संग तो था ही, उनके मित्र थे। तो इस दृष्टि से जिनका भी नाम भगवान ने लिया, और जितने भी हम भक्त देखते हैं, पूर्णता प्राप्त हुई भक्तों के संग से ही हुई। तो ये भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं, और फिर ब्रजवासियों पर आते हैं। भगवान कहते हैं तो भक्तों के नाम उन्होंने ले लिए अधिकतर, और फिर कहा जितने भी ब्रजवासी हैं उन सब का भी उद्धार हुआ, क्योंकि उन्हें भी संग मिला। तो ब्रजवासियों में वो वर्णन करते हैं, गोपियां हैं, स्वाभाविक है, गोपियों को तो संग मिल ही रहा है, सारे भक्त हैं। फिर वो वर्णन करते यमला अर्जुन, वृक्षों का, अभी दामोदर महीना आने वाला है, कार्तिक महीना, जहाँ हर रोज ये कथा होगी यमला अर्जुन की, जय शशि गौ नटराज दयाल निताय की जय। सुनकर उनको संग मिला, नारद मुनि का संग था तभी तो उनको पूर्णता प्राप्त हुई। तो यमला अर्जुन का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि जो लताएं हैं, पेड़ पौधे छोटे मोटे, तो वे भी भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं। गोपियां वहां घूमती हैं, उद्धव वर्णन करते ही हैं कि जब गए थे वृंदावन, कि वो भी एक गुल्म लता बनना चाहते हैं, ताकि गोपियों के चरणों की धूल उनके सर पर पड़े। तो भगवान कहते उनका भी उद्धार हुआ। सांपों का उद्धार हो गया, अर्थात कालिया, तो कालिया का भी उद्धार हुआ। तो ये वर्णन है। तो यहाँ वर्णन है कि इन सब ने अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा की, अलग अलग रसों में भगवान की सेवा की। जैसे गोपियों ने माधुर्य भाव में, माधुर्य रस में भगवान की सेवा की। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जो गायें हैं उन्होंने वात्सल्य रस में भगवान की सेवा की, क्योंकि वो सदैव कृष्ण को अपना दूध पिलाने के लिए तैयार रहती थी गायें, तो वात्सल्य भाव में उन्होंने की। गोवर्धन ने साख्य भाव में की, गोवर्धन एक सखा की भांति उनको सारा कुछ देते थे, उनके खेल के लिए, उनकी क्रीड़ा के लिए, लीलाओं के लिए। तो सखा की भांति उन्होंने गोवर्धन ने किया। और शांत रस में या दास्य रस में कहना चाहिए, दास्य रस में कहते कालिया ने भी दास्य रस में सेवा की। कालिया को पूर्णता इसलिए प्राप्त हुई कि उसने दास्य रस में सेवा की। तो जैसे पेड़ इत्यादि हैं, भगवान वर्णन करते हैं एक स्थान पर जब बलराम जी के साथ जा रहे हैं, 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि बलराम जी को कहते हैं कि देखो इन वृक्षों को, ये आज झुक झुक कर आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। और वृक्षों को देखकर भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कैसे हमें अपना सब सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए, दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, चाहे बुद्धि हो, अर्थ हो, प्राण हो, ये सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों ने भी अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त की केवल भक्तों के संग से। तो कालिया ने भी सेवा की दास्य भाव में। जानते हैं कि जब कालिया पर भगवान ने नृत्य किया और उसके बाद कालिया उस पता चल गया और कालिया भक्त हुआ। इसीलिए जब कालिया की पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की भगवान से, तो उन्होंने छोड़ने के लिए प्रार्थना की, अब इसको छोड़ दीजिए, मारिए नहीं। तो वहां प्रश्न आता है कि अरे इतना ये असुर और नाग पत्नियां भक्त हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, के लिए कह रही, क्योंकि अब वो भक्त हो गया। तो उसने भी सेवा की। तो ऐसे कहकर अब ब्रजवासियों का वर्णन करके अब भगवान गोपियों पर आ रहे हैं। सो गोपियों की परम अवस्था का वो वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब अक्रूर जी आए थे मुझे लेने के लिए और मुझे लेकर चले गए, तो गोपियों ने विरह में बहुत तीव्रता से भक्ति की। तो हम सब जानते हैं कि जब अक्रूर जी आए थे कृष्ण और बलराम को लेने, तो गोपियों ने रास्ता रोक लिया था, जाने नहीं देंगे। मगर फिर कृष्ण ने समझाया कि नहीं, मैं अभी आ जाऊंगा, बस कल परसों बस गया देखकर, बड़ा शहर नहीं देखा है मैंने, छोटे से गांव में रहा हूँ, पर मथुरा बड़ा शहर है, देखकर आता हूँ। तो गोपियां पूरा जीवन इस आशा में उन्होंने बिताया कि बस कृष्ण आने वाले, अब असुरों का वध करके अपना कार्य समाप्त करके वापस आ जाए। वो उनके लिए प्राण बनाए रखने के लिए एक आशा थी बस। तो ये गोपियों का स्तर वो बता रहे हैं कि उनके प्राण बने रहे केवल कृष्ण के आने की आशा से। तो इसलिए अक्रूर जी का वर्णन करते हैं कि जब वो आए और लेकर गए तो गोपियों ने कैसा गोपियों का भाव था। और फिर वो कहते हैं कि गोपियों के लिए मेरे से विरह युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो गोपियों ने इसको दिखलाया युगायतम निमेषेण। तो भगवान कहते हैं कि मेरे विरह में उनको पूरा जो एक क्षण भी है वो एक ब्रह्मा जी की रात्रि के समान लग रहा, और जब मेरे संग में थी तो फिर ब्रह्मा जी की यात्री भी बस एक क्षण की तरह लगा हूं। जब भगवान रासलीला करते हैं तो प्राय ब्रह्मा जी की रात्रि तक पूरे रासलीला चलती है, लेकिन वो समय गोपियों को लगता है कि बस अभी अभी तो शुरू हुआ था, अभी समाप्त तो हो गए। लेकिन विरह में युगायतम निमेषेण, उनको लगता है कि पूरा ब्रह्मा जी की रात्रि निकल गई। तो ये स्तर गोपियों का बताते हैं। और फिर कहते हैं कि दरअसल जो ये मेरा स्मरण वो करती हैं तीव्र, यही उनके लिए समाधि है। दरअसल ये समाधि है गोपियों की। सच्ची समाधि क्या है? समाधि का अर्थ ये नहीं है कि अपने सारे इंद्रियों के कार्य को बंद करके एक कहीं जगह पर बैठ जाना। समाधि है कि सारी इंद्रियों को कृष्ण पर केंद्रित कर देना, उसे समाधि कहते हैं। और गोपियों ने उस समाधि को प्राप्त किया कि उनके सारे कार्य, उनका अस्तित्व, उनका स्मरण सब कुछ कृष्ण के लिए था। उन्होंने चिंता नहीं की। जब श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई पंचम सुर में, भगवान अलग अलग सुरों में बजाते हैं और अलग अलग सुर अलग अलग कार्यों के लिए हैं। एक सुर होता है जहां सारी गायें भागकर आ जाती हैं। दूसरा सुर होता है जहां जो जो कुछ है वो सब स्तब्ध हो जाता है। तो ऐसे भगवान अलग अलग सुर में, और एक सुर पंचम सुर केवल गोपियों के लिए। तो शरद ऋतु की रात्रि पर या शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जब भगवान ने पंचम सुर में ये बांसुरी बजाई तो वर्णन है कि गोपियों ने कुछ नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा कि अभी हम क्या कर रही हैं, क्या होगा, कैसे जाएंगे, जाएं नहीं जाएं, बस सुनते ही सब कुछ छोड़कर आ गए। इसीलिए उद्धव गोपियों का गुणगान करते हुए कहते हैं, यह दुस्तज स्वजनम आर्य पथम चहित्वा। उन्होंने क्या त्यागा है जो बहुत कठिन है त्यागना। स्वजनों को त्याग दिया, लाज लज्जा को त्याग दिया, किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये गोपियों के लिए समाधि। तो सच्ची समाधि सतत कृष्ण में लगे रहना, अपनी इंद्रियों को कार्यों को बंद करना नहीं है, लेकिन सारी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, त्वचा से, सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा, ये समाधि। तो इसलिए आगे भगवान गोपियों का जो भाव है, अर्थात किस तरह वो कृष्ण में पूर्ण रूप से उनका मन लगा रहता है, इसका वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई साधु होते हैं, वो समाधि में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बाहरी कोई चीज का उनको ध्यान नहीं रहता। इसी तरह गोपियां थी, हालांकि वो सारे बाहरी कार्य कर रही थी, घर के कार्य कर रही थी, गायों की सेवा कर रही थी, संतानों को देख रही थी, लेकिन उनको बाहरी कोई चेतना नहीं थी, मन पूर्ण रूप से कृष्ण में था। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं कि हमारा कैसा ध्यान होना चाहिए। हमारे तो आंखें बंद हो जाती हैं, खैर वो भी एक ध्यान होता है, जब भागवत शुरू होती है तो एक ध्यान हमारा भी, हम भी ध्यान में चले जाते हैं, तो दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये गोपियों का ध्यान है कि सारे कार्य करते हुए सतत कृष्णमय, क्योंकि आसक्ति है। किसका स्मरण आता है हमें? जिसकी आसक्ति होती है। एक लोभी व्यक्ति जो धन कमाना चाहता है, उसको धन से आसक्ति है, वो सोते जागते धन का इस बारे में सोचता। एक कामी व्यक्ति जिसको स्त्री से आसक्ति है, सोते जागते एक स्त्री के बारे में सोचेगा। इसी तरह तो ये जो बंधन होते हैं, जो आसक्ति है, ये बंधन का कारण होती है इस जगत में, और ऐसा बंधन कष्ट देता है। तो ये आसक्ति को तुलना एक रस्सी से की गई है। तो रस्सी से जैसे किसी को बांध दिया जाए तो वो कैसे सुखी रहेगा, वो कैसे आनंद लेगा। तो इसीलिए जब व्यक्ति अपने आप को आसक्ति की रस्सी से बांधता है तो दुखी होता है। वही व्यक्ति जब अपने आप को कृष्ण नाम की रस्सी से बांध लेता है तो परम सुख का अनुभव करता है। तो हमारी आसक्ति हमें बढ़ानी है कृष्ण में, ताकि सतत स्मरण रहे। उस कामी पुरुष की तरह, उस लोभी पुरुष की तरह, जिसको या कोई सत्ता का लोभी है, तो देखिए उन लोग को सतत, चाहे उनकी कुर्सी हो या ना हो, स्मरण यही रहता है, कैसे कुर्सी मिलेगी, बस कैसे कुर्सी पर बना रहा हूं। ऐसा हमारा स्मरण कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो भगवान इनका वर्णन करते हैं और फिर आगे कहते हैं कि गोपियों ने मुझे जो प्राप्त किया, कोई बहुत बड़े ज्ञान से नहीं, बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं थी गोपियां, लेकिन उन्होंने मुझे प्राप्त किया केवल प्रेम के द्वारा, आसक्ति से। तो फिर वो उद्धव को उपदेश देते हैं, वही उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के अंत में दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम द्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये संदेश उन्होंने अर्जुन को दिया। तो उद्धव से भी वैसा ही संदेश वो दे रहे हैं। तो उद्धव को कहते हैं कि बाकी सब जितने भी आप कर्तव्य सोचते हो, धर्म सोचते हो, उन सबको छोड़ दो। भगवान अब उद्धव को यही कह रहे हैं, और क्या करो, तुमने बहुत सारे मार्गों का पालन कर लिया। दरअसल उद्धव के द्वारा वो हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो कह रहे बहुत सारे प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का पालन कर लिया तुमने, धर्म का पालन कर लिया, बहुत सारे कर्तव्यों को कर लिया, अब सब छोड़ो। तो क्या हो, छोड़ के क्या करें? दो चीजें भगवान कहते हैं, मेरे बारे में सुनने की इच्छा को बढ़ाओ और मुझे समर्पण करो, केवल मुझे। सेम चीज, जो वही चीज उन्होंने अर्जुन को कही थी, माम एकम। तो भगवान यहां भी उस बात को दोहरा रहे हैं, और अगर ऐसा करोगे उद्धव तो तुम पूर्ण रूप से सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाओ। इस जगत में हमें भय क्यों है? भय का प्रमुख कारण क्या है? भय का प्रमुख कारण है सत्य से दूर रहना। जब हम प्रकाश में रहते हैं हमें डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही पूर्ण अंधकार हो जाता है भय आ जाता है, हमें डर लगता है। हम उस जगह पर चलने में भी डरते हैं जहां हम रोज चल रहे हैं। जैसे इस समय अभी प्रकाश है, अगर आपको यहां से वहां जाने के लिए कहा जाए बड़े आराम से चले जाते हैं, आपको देखना नहीं पड़ता मेरा अगला पैर कहां पर मैं रख रहा हूं। लेकिन वहीं अगर पूरा अंधकार हो, कुछ नहीं दिख रहा, उस समय आपको यहां से वहां जाने के लिए आप घबराएंगे, पैर रखने में घबराएंगे, कहीं किसी चीज से टकरा ना जाए। तो अंधकार ये भय का कारण है, अज्ञान ये भय का कारण। किस चीज का अज्ञान? जब अज्ञान से हमें आसक्ति होती है, भय बहुत चीजों से होता है, लेकिन मूल है अविद्या। अविद्या से अहंकार प्रकट होता है। जब अविद्या होती है, हम जानते नहीं हम कौन हैं, हम जानते नहीं कृष्ण कौन है, जो अविद्या है ये अहंकार को प्रकट करती है। जब हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, तो हम सोचते हैं हम ये शरीर है, तो अहंकार आता है, और उस अहंकार से आसक्ति आती। तो प्रारंभ अविद्या से, अविद्या से अहंकार, अहंकार से आसक्ति, और वो आसक्ति भय उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। क्योंकि आसक्ति है किसी को शरीर से, किसी को धन से, किसी को संबंधियों से, किसी को अपने संपत्ति से, तो ये आसक्ति भय उत्पन्न करती है। और एक भक्त जो भगवान को समर्पण कर दे, जैसे भगवान यहां कह रहे हैं, तो वो क्यों अभय हो सकता है, निर्भय हो सकता है? क्योंकि अविद्या दूर हो जाती, वो जान जाता है कि इस चीज से मेरा कुछ लेना देना नहीं। जैसे इस जगत में भी हम लोग देख सकते हैं, हमें अपनी चीजों का बड़ा डर रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, तो रात को आप उसको कहीं सड़क पर नहीं छोड़ेंगे, आप उसको बड़े संभाल कर घर के अंदर रखना चाहेंगे। लेकिन दूसरे की गाड़ी कभी पड़ी रहती है तो आप चिंता करते हो। कभी आपने किया कि आप सड़क से जा रहे थे, आपने देखा किसी की गाड़ी सड़क पर खड़ी है, आपने नंबर लिया, उसका ढूंढा कौन है, उसको फोन किया कि अरे भाई अपनी गाड़ी ले जाओ, कोई चोर चुरा लेगा। कभी किया हमने? कभी चिंता की? क्यों? हमारी गाड़ी नहीं है, हम क्यों चिंता करें, जिसकी है वो करेगा। तो ऐसे ही जब हमें अपनी गाड़ी की चिंता है, मतलब जब तक हम सोचते हैं कि मैं हूं, मेरा शरीर मेरा है, तो जब तक मैं और मेरे की भावना है, भय है। और दूसरे की गाड़ी का अर्थ क्या है? जब हम जान जाते हैं कि शरीर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये तो केवल थोड़े समय के लिए मुझे मिला है कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, मेरा है ही नहीं, ये जगत मेरा नहीं है, ये संबंधी मेरे नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, ये तो केवल थोड़े समय के लिए दिया गया है, उपयोग करें भगवान की सेवा। इस भाव में जो है उसको भय नहीं होगा। जो मेरा था ही नहीं, अगर चला गया तो उसका भय कैसे? तो इसलिए भगवान उद्धव से कहते हैं कि इसके द्वारा आप भय से मुक्त हो जाओ। अब इतना सब सुनने के बाद उद्धव थोड़ा सा भ्रमित हो गया, जैसे अर्जुन भ्रमित हो गए थे, बहुत कुछ सुना, उसके बाद अर्जुन ने कहा कि स्पष्ट बताइए क्या करना है, ये करना है या ये करना है? आप ये कहते हो, ये कहते हो, ये कहते हो, ऐसे ही उद्धव कह रहे हैं कि आपने इतना कुछ बता दिया। भगवान ने प्रारंभ किया था 10वें अध्याय में, हमने देखा भगवान ने बोलना शुरू किया, 11वें 12वें में भगवान बोल रहे हैं, उदाहरण दिए 24 गुरुओं के, उसके बाद और ज्ञान देना शुरू किया, सब हो गया। और भगवान ने सब कुछ बताया कैसे करना है, अंत में गोपियों का भी वर्णन कर दिया, तो इतने विस्तार से किया। तो अब उद्धव कह रहे कि आपने जो बताया वो तो सही है, लेकिन मेरा संशय वह अभी भी, मैं बहुत भ्रमित हो गया हूं, इसलिए स्पष्ट बताइए क्या करना है, मुझे करना क्या है वो बताइए। तो फिर भगवान अब शुद्ध भक्ति का वर्णन उसको करते हैं उद्धव को। तो बहुत नियम से भगवान बताते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या स्थिति होती है, तो भगवान उनका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि जितना भी जीवन है ये मेरे द्वारा दिया गया, जहां भी आप जीवन देख रहे हो ये मुझसे आता है। सो अर्थात मूल ज्ञान हम सब भगवान से आ रहे हैं, तो मूल ज्ञान भगवान देते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि धीरे धीरे जब व्यक्ति इस जगत में अलग अलग योनियों से होता हुआ मनुष्य में आता है, फिर मनुष्य में भी बहुत धीरे धीरे वो वैदिक ज्ञान तक आता है, वैदिक ज्ञान को लेता है और फिर आगे बढ़ता है, मुझ तक प्राप्त करता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे माचिस की तीलियां होती हैं, अग्नि होती है, उनको दोनों को, दो चीजों को अगर घर्षण किया जाए तो उससे ताप निकलता है और फिर अग्नि होती। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि अगर जो ध्वनि है वो अगर उसका घर्षण हो, मतलब ध्वनि व्यक्ति दिव्य ध्वनि अपने मुख से कंठ से निकाले, तो फिर उसके द्वारा जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही ध्वनि के घर्षण से भगवान प्रकट होते हैं या भक्ति प्रकट होती। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी भौतिक तत्व देख रहे हो, भगवान ने वर्णन किया इन कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तीन गुणों की अवस्था है, प्रधान है, ये सब वर्णन किया। तो ये सब जो देख रहे हो ये मेरी शक्ति है, मैं भौतिक रूप में इनके द्वारा प्रकट होता हूं, ये भगवान बता रहे हैं। और कई रूपों में प्रकट होता हूं, भगवान के कई रूप हो सकते हैं। तो कहते कि जैसे एक बीज होता है, तो बीज को जब बोया जाता है तो कई रूपों में प्रकट होता है, कई वृक्षासक वृक्ष हो जाता है, उसके पहले वो थोड़ा सा पौधा होता है, फिर ऐसे अलग अलग रूप प्रकट लेता है। तो ऐसे ही मैं बहुत से रूपों में प्रकट होता हूं। और ये जो ब्रह्मांड देख रहे हो उद्धव, ये ब्रह्मांड एक कपड़े की तरह है, जैसे कपड़े में धागे होते हैं, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, ऐसे धागे होते हैं और उन्हीं धागों से ब्रह्मांड ये कपड़ा बना होता है। जैसे कपड़ा है इसमें केवल धागे हैं, सारे धागे निकाल दीजिए कपड़ा रहेगा नहीं। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कपड़े का कि जो ब्रह्मांड है कपड़े की तरह है और इसमें तीन धागे हैं केवल, प्रकृति के तीन गुण, वही इधर उधर करके उन्होंने पूरा इस ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो भौतिक अस्तित्व है इस जगत में, ये एक वृक्ष की तरह है। तो बहुत सुंदर वर्णन वृक्ष का करते हैं भगवान इस अध्याय में। तो कहते हैं इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में भी वृक्ष का वर्णन किया है, अश्वत्थ। तो यहां वर्णन कर रहे हैं इस भौतिक वृक्ष के दो बीज हैं, सैकड़ों जड़े हैं, तीन निचले तने तथा पांच ऊपरी तने हैं। यह पांच प्रकार का रस उत्पन्न करता है, 11 शाखाएं हैं और दो पक्षियों ने घोंसला बना रखा है। यह वृक्ष तीन प्रकार की छालों से ढका है, दो फल उत्पन्न करता है और सूर्य तक फैला हुआ है। जो लोग भौतिक भोग भोगने के इच्छुक हैं और पारिवारिक जीवन में लगे हैं, वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की सहायता से इस वृक्ष का एक परम सत्य की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ समझ लेता है, वही असली अर्थ को जानता है। तो अब ये वृक्ष क्या है, सबसे पहले वर्णन कर रहे भगवान दो बीज हैं। तो दो बीज कौन से हैं, पाप और पुण्य, ये दो बीज हैं इस वृक्ष के। दूसरा भगवान कहते हैं सैकड़ों जड़े हैं। सैकड़ों जड़े क्या हैं, हमारी इच्छाएं, जीव की भौतिक इच्छाएं जो इस भव सागर में हमें बांध कर रखते हैं, और कहा कि तीन निचले तने हैं। तो तीन निचले तने क्या हैं? भौतिक प्रकृति के तीन गुण। और पांच ऊपरी तने हैं इस वृक्ष के, पंच महाभूत, पांच भूमि, भूमि रापनलो वायु खम। फिर उन्होंने कहा इसमें 11 शाखाएं हैं। तो 11 शाखाएं कौन सी हैं? पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सो 11 ये उन्होंने शाखाएं दी। और दो पक्षियों ने घोंसला बना रखा है, आत्मा और परमात्मा। तो ये दो पक्षियों ने घोंसला बना रखा है। तीन प्रकार की छाले हैं। छाल मतलब समझते हो आपको, क्या बोलते हैं वृक्ष की छाल, वो जो ऐसे निकाल सकते हैं ना, वृक्ष के ऊपर ऊपर होती है, क्या कहते हैं उसको, छाली कहते हैं। हाँ, सो जी यहाँ कहा कि तीन प्रकार की छाले हैं। तो तीन प्रकार की छाल क्या हैं? कफवात पित्त, ये कफवात पित्त तीन हैं। और फिर आगे कहते हैं कि तीन छालों से लगा ये दो फल उत्पन्न करता है। तो क्या उनसे दो फल उत्पन्न करता है? सुख और दुख। तो सुख और दुख कल करते, तो एक को भोगते हैं, एक फल का भोग, एक वृक्ष, वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं पारिवारिक जीवन वाले, और दूसरे फल का भोग करते हैं संन्यास आश्रम वाले। सभी कौन से फल का भोग पारिवारिक वाले करते हैं और कौन से फल का भोग संन्यास वाले करते हैं, ये नहीं लिखा है यहाँ भगवान ने। तो दो फल है, सुख और दुख। बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक लोग भी देख रहे हैं इसको। सो सुख और दुख दो हैं, एक का अनुभव पारिवारिक और दूसरे का संन्यास के जो आश्रम है उसमें करते हैं। तो इस वृक्ष को भगवान ने ऐसे वर्णन किया और कहा कि इसको काटना है। सो भक्ति वो मार्ग है जिससे हम ये जो पूरा वृक्ष है, सुख दुख पाप पुण्य तीन गुण, सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो उसको हमें काटना है, इस वृक्ष को इससे बाहर जाने का प्रयास करना है। तो अंतिम श्लोक में भगवान उद्धव से कह रहे कैसे इस वृक्ष को काटा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं, इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम धीर बुद्धि से गुरु की सावधानी पूर्वक की जाने वाली पूजा द्वारा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो। तो शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है जब हम बड़े सावधानी से गुरु की पूजा करते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथितम यर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। और फिर दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुल्हाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट दो। सूक्ष्म भौतिक आवरण क्या है? सूक्ष्म भौतिक आवरण हम सब जानते, मन बुद्धि अहंकार। तो इस शरीर को तो कोई भी काट सकता है, लेकिन सूक्ष्म आवरणों को कोई नहीं काट सकता। तो उसको भक्ति के द्वारा काटा जाता है। तो इसको भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो अंत में तात्पर्य में लिखा है, हम पढ़ते हैं इसका अंतिम श्लोक का तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बतलाया है कि वृंदावन की गोपिकाएं जीवन के प्रति वैश्लेषिक दृष्टिकोण में रुचि नहीं रखती थी। वे तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि उनके सारे भक्त सबसे उच्च कोटि का निष्काम भगवत प्रेम उत्पन्न करने के लिए ब्रज बालाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करें। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गे नया कल्पिता। महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक जगत के स्वभाव का विस्तृत विश्लेषण इसलिए किया है जिससे इस जगत का भोग करने का प्रयास कर रहे बद्ध जीव ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से भौतिक संसार रूपी वृक्ष को काट सकें। ऐसे व्यक्ति को इस माया सृष्टि के अपने ज्ञान को लगातार परिष्कृत करते हुए माया के साम्राज्य में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जिसने भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मान लिया है वह श्री भगवान की सेवा के सनातन आनंद का भोग कर सकता है। इस जगत में रहते हुए भी उसका इससे कोई नाता नहीं रहता। और इसका निषेध करने की वैश्लेषिक विधियों को वह त्याग देता है। इसलिए उद्धव से श्री भगवान कहते हैं, तुम वैश्लेषिक रूपी कुल्हाड़ी को त्याग दो, जिससे तुमने अपने स्वामित्व भाव तथा भौतिक जगत में निवास को काट डाला है। तो यहाँ ये अंत में भगवान वर्णन करते हैं कि किस तरह गुरु की कृपा से हम लोग इस भौतिक जगत के जो वृक्ष है इसको काट सकते हैं। अर्थात भगवान ने प्रारंभ किया था भक्तों के महत्व से, संग से, और अध्याय के अंत में भी वही चीज भगवान दोहरा रहे हैं कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक पूर्णता इस पर आधारित नहीं है कि आपको क्या पता है। हमें पद्म पुराण पता है, हमें स्कंद पुराण पता है, हमें ये पता है। आध्यात्मिक पूर्णता इस पर आधारित नहीं है कि आपको क्या पता है या आप क्या जानते हैं। इस पर आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक पूर्णता नहीं है। आध्यात्मिक पूर्णता है आप किसे जानते। सो स्पिरिचुअल परफेक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू नो बट हुम यू नो, किसको जानते हैं, अर्थात किसका संग कर रहे हैं। क्योंकि कब ऐसे शास्त्र तो बहुत सारे लोग जानते हैं, शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं वो तो शास्त्रों को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जानते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक पूर्ण इसमें नहीं है कि हम क्या जानते हैं, हम किसे जानते हैं। हम प्रभुपाद को जानते हैं, आध्यात्मिक पूर्णता है। हम शास्त्र जानते हैं, भगवान कहेंगे वो थोड़ा साइड में खड़े हो, बाद में बात करेंगे। इसलिए आध्यात्मिक पूर्णता उसमें है ये नहीं कि हम क्या जानते हैं बल्कि हम किसे जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भागवत में भी कई स्थानों पर कहा गया है, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे अगला जन्म देना है, कहीं पर भी दीजिए लेकिन भक्तों के घर में हो, कहीं पर पड़ा रहूंगा तो सुनाई देगा, कोई कीर्तन चलेगा, जैसे भक्त सुबह सुबह जप करेंगे तो उनके घर में कोई कीड़ा भी है उसको भी वो सुनाई दे रहा, जप होता है, कीर्तन होता है, वो सुन रहा है। तो ये कामना की है। इसलिए यहाँ वो जो कुत्ते आते हैं, हमें लगता है कि पिछले जन्म में कई तो बड़ा काम किया होगा उन्होंने, फिर प्रार्थना की होगी कि वो आराम से भजन सुन रहे, कीर्तन सुन रहे हैं, कभी कभी कथा भी सुन लेते हैं गलती से, लेकिन बहुत कम सुनते हैं। मुझे लगता है पिछली बार ऐसा ही हुआ होगा, भागवतम के समय सोते होंगे वो, तो इस बार भी वो कंटिन्यू चल रहा है उनका। बाकी सब में रहते हमने देखा, भागवतम या तो सो जाते हैं या इधर उधर रहते। तो ध्यान रखो भागवतम में सोना जरा खतरनाक। तो खैर ये शास्त्रों में की गई, उद्धव ने प्रार्थना की है, कई भक्तों ने प्रार्थना की है कि मुझे बस कहीं ऐसा मिल जाए कि भक्तों का संग हो, कानों में कीर्तन पड़ता रहे, पड़ा रहूं कहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने एक भजन में, कुत्ता बना दीजिए वैष्णव के घर के बाहर, वो टुकड़ा फेंकेगा बस उसको खा लूंगा, बस उसी में मेरा जीवन सफल है। सो भगवान भागवतम में भी कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। सताम प्रसंगान, मेरी कथाओं को सुनना है भक्तों के संग में सुन। तो इस अध्याय में मूलतः भगवान भक्तों के महत्व का वर्णन कर रहे हैं और इसीलिए परम रहस्य को उन्होंने प्रकट किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, ये प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरिदय सिंधु प्रभु, आप सब जानते हैं जो रोज यहाँ क्लास बहुत गंभीरता से अटेंड कर रहे हैं, एक संदेश है उनका कि वे हॉस्पिटल में हैं,
हमें नहीं पता कि हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि तो वैसे रोज ही हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ के संदेश से ऐसा लग रहा है कि शायद बीमार हैं। और उन्होंने भक्तों से कहा है कि प्रार्थना करें। क्लास में है? अच्छा, तो हॉस्पिटल में मतलब ड्यूटी पे है या हॉस्पिटल में, समझ नहीं आ रहा। एनीवे, जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि भक्तों से प्रार्थना करने के लिए निश्चित हम लोग प्रार्थना करें। आरती माता जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, डरना पीना प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मतलब पड़ोस में
आवाज
है,
नहीं आ रही। ओ, इधर बंद है, 1 मिनट।